अब प्रस्तुत है हमारा कार्यक्रम भजन शिक्षा। कक्षा में प्रस्तुत हैं भगवान बाबा के प्रिय भजन गायकों में से एक श्री श्रीनिवासलु सर एवं टीम रेडियो साई के प्रिय सदस्य श्री अनिरुद्ध श्रीनिवासन जी।
गुरुदेवा शरणं देवा।
रेडियो साई भजन शिक्षा कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज की कक्षा के लिए हमने गुरु वंदना करता हुआ ये भजन चुना है। चलिए अब इस भजन के बोल जान लेते हैं।
गुरुदेवा शरणं देवा, पाहि प्रभो शरणं देवा, सुंदर रूपा श्री साई देवा, शरणं शरणं सद्गुरु देवा।
आज की कक्षा के लिए इस भजन को जी पंचम श्रुति में गाया जा रहा है, जिसे डी अर्थात सफेद दो का मध्यम भी कहते हैं।
गुरुदेवा शरणं देवा,
गुरुदेवा शरणं देवा,
गुरुदेवा शरणं देवा,
गुरुदेवा शरणं देवा,
पाहि प्रभो शरणं देवा,
पाहि प्रभो शरणं देवा,
पाहि प्रभो शरणं देवा,
पाहि प्रभो शरणं देवा,
गुरुदेवा शरणं देवा,
गुरुदेवा शरणं देवा,
सुंदर रूपा श्री साई 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 देवा,
शरणं शरणं सद्गुरुदेवा,
शरणं शरणं सद्गुरुदेवा,
शरणं शरणं सद्गुरुदेवा,
शरणं शरणं सद्गुरुदेवा,
गुरुदेवा शरणं देवा।
कहरवा ताल और राग शिवरंजनी पर आधारित इस भजन की धुन जान लेने के बाद आइए अब रुख करते हैं साई भजनों की आत्मा कहे जाने वाले भाव पक्ष का। इस भजन में प्रयुक्त तकरीबन सभी शब्दों के अर्थों से हम परिचित ही हैं, अतः हम इस भजन की पंक्तियों में निहित भावार्थ को समझने का प्रयास करेंगे। पहली पंक्ति में गुरु से शरण देने की याचना की जा रही है।
गुरुदेवा शरणं देवा।
हमारे जीवन में गुरु का महत्व समझाने हेतु स्वामी ने सन 1965 में 14 जनवरी को दिए संभाषण में कहा था कि एक बार एक व्यक्ति बहुत ही निराश था। उसने रेलवे टिकट काउंटर से टिकट मांगी, परंतु वहां कार्यरत कर्मचारी उसे टिकट दे पाने में इसीलिए असमर्थ था क्योंकि इस व्यक्ति को अपने गंतव्य का ज्ञान नहीं था। उसे कहां जाना है ये मालूम नहीं था। वो बस त्रस्त हो गया था और उस जगह से निकलना चाहता था, परंतु जाना कहां है ये स्पष्ट ना बता पाने के कारण टिकट कर्मचारी उसकी चाह कर भी कोई सहायता नहीं कर पाया। स्वामी ने कहा कि हमारी दशा भी इस व्यक्ति के जैसी ही है। ये संसार हमेशा सुखद अनुभव ही नहीं देता। इस संसार में पूर्णतः डूबा व्यक्ति अपने आप को खुश नहीं पाता। इंसान सुख दुख की लहरों में गोता खाता रहता है। भाग्य कभी उसका साथ देता है, कभी नहीं भी देता। कभी उसे आदर सम्मान प्राप्त होता है तो कभी निंदा। वातावरण में फैले दुर्गुण और दुष्प्रभाव उसके सुख चैन को हर लेते हैं। जीव थपेड़े खाकर इन सब से बचना चाहता है, लेकिन उसे ज्ञात नहीं है कि उसे जाना कहाँ है, कहाँ उसे शांति मिलेगी और कहाँ आनंद प्राप्त होगा। आध्यात्मिक गुरु ही हमारा मार्गदर्शन कर सकते हैं और दिखा सकते हैं कि हमें जाना कहाँ है, लेकिन गुरु भी सिर्फ गंतव्य और दिशा का बोध ही करा सकते हैं। चलना तो हमको स्वयं ही है उनके दिखाए रास्ते पर। गुरु के मार्गदर्शन और परामर्श के बाद ये हम पर ही निर्भर करता है कि हम गंतव्य तक पहुंचना भी चाहते हैं या नहीं। एक बार एक छात्र ने स्वामी से पूछा, स्वामी शरणागति का अर्थ क्या है? तो स्वामी ने इसका बहुत ही सुंदर उत्तर देते हुए कहा, तुम लोगों ने कार देखी है ना, उसमें कितने गियर्स होते हैं? चार गियर होते हैं। जीवन में भी चार गियर्स होते हैं, सुख दुख हानि लाभ। और जिस प्रकार वाहन में एक से दूसरे गियर में जाते समय क्लच का इस्तेमाल करते हैं ताकि झटका ना लगे, उसी प्रकार हमें भी जीवन में इन चार गियर्स में से एक से दूसरे गियर में जाते समय आत्मसमर्पण रूपी क्लच का इस्तेमाल करना चाहिए। जीवन में सुख दुख हानि लाभ तो लगा ही रहता है, चलता ही रहता है। शरणागति रूपी क्लच के इस्तेमाल से हम झटकों और दुष्प्रभावों की चोट से बच सकते हैं। पाही प्रभो, इस भजन की द्वितीय पंक्ति में इससे आशय है कि हम ईश्वर से हमारी मदद के लिए गुहार लगा रहे हैं। इस भजन की तीसरी पंक्ति में हम हमारे प्रिय भगवान के मनमोहक रूप की वंदना कर रहे हैं।
सुंदर रूपा श्री साई देवा।
इस संदर्भ में हम कुछ एक अनुभवों के माध्यम से उन्हें अनुभव करने का प्रयास करते हैं। स्वामी ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है कि हमारी सुंदरता हमारे गुणों पर निर्भर करती है। सन 1993 के समर कोर्स के दौरान दिए गए एक दिव्य संभाषण में उन्होंने कहा, मनुष्य घर को और अपने शरीर को संवारता है क्योंकि वो सुंदर दिखना चाहता है, लेकिन ऐसा बाहरी तौर पर किया गया प्रयास केवल कुछ ही समय के लिए सुख दे सकता है, इससे शाश्वत आनंद की प्राप्ति नहीं होती। हमें वास्तविक तृप्ति आंतरिक सुंदरता से प्राप्त होती है, बाह्य सौंदर्य से नहीं। इसीलिए हमें अपने अंदर हृदयागत सौंदर्य को विकसित करने का प्रयास करना चाहिए। प्रेम, करुणा एवं सबूरी आदि कुछ ऐसे गुण हैं जो हृदय की सुंदरता बढ़ाने में सहायक होते हैं। बहुत समय पहले एक बार जब जॉन हिस्लॉप जी भगवान बाबा के साथ थे, तब भगवान बाबा के भक्त दल में से एक नवागंतुक महोदय ने स्वामी से कहा कि लोग दर्शन के दौरान बाबा की तस्वीरें खींचकर जब बाहर उन्हें बेचते हैं तो वे तस्वीरें उतनी सुंदर और आकर्षक नहीं दिखती जितने स्वामी वास्तव में दिखते हैं। उन्होंने कहा कि स्वामी से संबंधित सभी वस्तुएं भी उतनी ही मनमोहक एवं सुंदर होनी चाहिए जितने स्वामी स्वयं हैं। तो बाबा ने हंसकर उन्हें समझाते हुए कहा कि सुंदरता तो देखने वाले नेत्रों में होती है, ना कि नजर आने वाली वस्तु में। प्रेम ही सौंदर्य की आत्मा है। हमारे अंदर प्रेम नहीं होगा तो हमें सुंदरता नजर नहीं आएगी। स्वामी ने एक घटना बतलाते हुए अपनी बात को स्पष्ट करते हुए कहा, अंग्रेजी भाषा के एक मूर्धन्य साहित्यकार लेखक श्री जॉनसन जी अपनी श्रीमती जी की सुंदरता का गुणगान करते नहीं थकते थे। वे उनसे बहुत प्रेम करते थे। एक बार उनके एक मित्र ने उनसे कहा कि तुम्हारी बीवी तो काफी वृद्ध और अनाकर्षक दिखती हैं, ये क्या मनगढ़ंत बखान कर रहे हो। वाकई में उनकी पत्नी सुंदर नहीं थी, लेकिन जॉनसन जी को वो बहुत सुंदर दिखती थी, तो कोई क्या कर सकता है। एक बार अपने छात्रों को स्वामी ने ध्यान लगाने का सहज उपाय बतलाते हुए कहा, मैंने ये शरीर तुम लोगों के लिए ही धारण किया है ताकि तुम मुझे देख सको। ध्यान के समय अपने मानस पटल पर तुम मेरे इस स्वरूप के चेहरे और चरणों पर ही ध्यान केंद्रित करो। पहले मेरे केश देखो, फिर मेरे नेत्रों को। मेरे जैसे नयन किसी और के नहीं हैं, इनमें बहुत गहराई है। फिर मेरी दोनों आंखों के बीचों बीच मेरी नासिका के ऊपरी भाग में स्थित परत को देखो। क्या किसी और के चेहरे पर यह तुम्हें दिखाई देती है? नहीं देगी। फिर मेरी मुस्कुराहट का ध्यान करो, ऐसी बाल सुलभ मुस्कान किसी की नहीं है। चेहरे के बाद सीधे मेरे चरणों पर आ जाओ, इसीलिए मैं ये लंबा चोगा पहनता हूं। फिर पैरों से पुनः चेहरे पर आ जाओ। इसी प्रकार इस प्रक्रिया को यथासंभव दोहराते रहो, जब तक एकाग्रता बनाए रख सको तब तक। यही मेडिटेशन है, अर्थात ध्यानावस्था है। यदि कोई भगवान शिव में आस्था रखता है और ध्यान करना चाहता है तो उसके लिए ये कितना दुष्कर होगा उनके स्वरूप पर ध्यान लगा पाना, जरा सोचो तो। पहले उसे गंगा जी को देखना है, फिर चंद्रमा को, फिर नाग को, फिर रुद्राक्ष को, और यदि इसमें से कुछ भी छूट गया तो उसे ये सब पुनः दोहराना पड़ेगा। इतने में तो नींद ही आ जाएगी। इसीलिए मेरे स्वरूप पर श्रद्धा और प्रेम सहित ध्यान लगाओ। तो चलिए इन्हीं भावनाओं से ओतप्रोत होकर हम इस भजन को एक बार पुनः दोहराते हैं। इसी के साथ हमारे आज के भजन प्रशिक्षण के कार्यक्रम का अब समापन होता है। हमें आशा है कि आपको आज की कक्षा पसंद आई होगी। हम शीघ्र ही एक और भजन लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। जय साईं राम।